गोपीजन बल्लव गिरिवर धारी यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीराबनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवज आचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज आचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको आज सुबह की इस भागवत कथा में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भागवत स्कंद 4 अध्याय 13 से चर्चा करेंगे। तो लगभग हम लगभग 2 साल के बाद फिर भागवत, अब जहाँ छोड़े थे लॉकडाउन के बाद, हम 4th कैंटो से फिर शुरू करने वाले हैं। तो आज मुझे बोला गया कि चैप्टर 12 जो है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम शुरू कर रहे हैं भागवत कथा, तो 12 चैप्टर को फिर से उसको रिकैप करने के लिए बोला गया है। तो 12 चैप्टर को हम फिर से उसको थोड़ा रिकैप करेंगे, फिर 13वां जो आज का श्लोक है आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक क्रमांक है 4.13.6। छः से लेके आज हम चर्चा करेंगे 20 श्लोक तक, लेकिन मैं 12वां चैप्टर को पूरा सारांश में एक बार उसको मैं रिकैप करूंगा, और उसके बाद आज का जो सेक्शन है उसको मैं आप थोड़ा उसके ऊपर बताएंगे। 4.13.6 मैत्रेय उवाच। ध्रुवस्य चुत्कल पुत्र पितरी प्रस्थिते वनम सार्वभौमाश्रियं नैचेत् अधिराजासनं पितुः। मैत्रेय उवाच। ध्रुवस्य चुत्कलः पुत्र पितरी प्रस्थिते वनं सार्वभौमाश्रियं नैचेत् अधिराजशनं पितुः। मैत्रेय उवाच। ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरी प्रस्थिते वनं सार्वभौमो श्रियं नैच अधिराजासनं पितुः। मैत्रेय उवाच कुलपुत्र पितरी प्रस्थिते वनम् सार्वभौमं श्रियं नैचात् अधिराजासनं पितुः। ओके, सो इसका कोई परपोट नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था, मैं 12वां जो चैप्टर है रिकैप करने वाला हूँ, उसको मैं 12वां चैप्टर शुरू करता हूँ, और जब जैसे 13वां चैप्टर तक आ जाएंगे अध्याय तक, फिर आगे हम बढ़ेंगे इसके श्रृंखला के साथ, सो दैट हमारा सीक्वेंस बने रहेगा और हमको फ्लो भी पता चलेगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण के इस चतुर्थ स्कंद में ये जो सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ध्रुव महाराज का जो लीला है इस चतुर्थ स्कंद में, भगवान हमारे जो विदुर मुनि हैं और मैत्र के बीच में संवाद हो रहा है, और मैत्र मुनि विदुर जी को बता रहे हैं ध्रुव महाराज का कथा के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो 12वां अध्याय है, यहाँ पर जैसे आप लोग को पता रहेगा, ध्रुव महाराज जैसे उनको पता चल, उनके और एक भाई थे उत्तमा, और जब उत्तमा का वध हो जाता है, यक्ष लोग जब उत्तमा को मार देते हैं, तब ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आता है, और उसका बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज अलकापुरी में जाते हैं, जो कि यक्षों का राज्य रहता है, और वहाँ पर हमला करते हैं, और बहुत सारे बोला जाता है कि यक्षों को वध करते हैं, मारते हैं। तो बोला जाता है कि ध्रुव महाराज क्यों ऐसा करें, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि पहले ध्रुव महाराज जंगल जाने का, इतना तपस्या करने के पीछे में कारण था कि वो पापा के गोद में बैठना चाहते थे, जो कि उत्तम पहले बैठा था। तो पहले इसलिए ध्रुव महाराज को उत्तम के प्रति थोड़ा गुस्सा था कि उसके कारण मुझे बैठने को नहीं मिल रहा है। और बाद में जब भगवान का दर्शन करके ध्रुव महाराज आ जाते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया होता है और उनको कुछ इच्छा भी नहीं है। लेकिन लोग अगर ऐसा वो प्रतिरोध नहीं करते, तो लोग उनके ऊपर आशंका करते ना, भाई के प्रति अभी भी गुस्सा रखा है। तो उसको प्रूव करने के लिए वो जानबूझ के गए और अलकापुरी में बहुत पैमाने से जितने सारे जो यक्ष थे उनको मारने लगे, और उनका गुस्सा बहुत था, क्योंकि वो भाई का जो प्रतिशोध लेना चाहते थे। और बोला जाता है कि जितने सारे यक्ष आते थे, अकेला ध्रुव महाराज अकेला व्यक्ति सबको मार डाले, और जो भी आ रहे थे उनको मार रहे थे। और तब वहां पर पहुंचते कौन, स्वयंभू मनु पहुंचते हैं, जो कि ध्रुव महाराज के ही डायनेस्टी में आगे आते हैं, ऊपर आते हैं। तो स्वयंभू मनु आके ध्रुव महाराज को बोलते हैं कि बेटा, एक व्यक्ति का दोष के लिए पूरा सारा वंश को मारना ठीक नहीं है, अकेला ने गलती किया और आपने इतना सारे लोग को मार भी दिया ना, पूरा वंश को निपात करने का क्या जरूरत है। अभी आपका जो क्रोध है, ये जो लिमिट रहता है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, और आप यहाँ पर इसको विराम दीजिए और आप मत मारिए। तो देखिए, ध्रुव महाराज युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं और इतने लोगों को मार भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्वयंभू मनु उनको बोलते हैं कि अभी मत मारिए, विराम दीजिए, तुरंत ध्रुव महाराज वहां पर स्टॉप हो जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। डिवोटी जब भी कुछ करता है और जब भी उसको ऊपर से संकेत आता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसी मुहूर्त जो रहता है भक्त रहता है, वो परिवर्तन कर देता है, अपना दिशा को बदल देता है। लेकिन वही चीज अगर आप देखोगे, कोई नॉन डिवोटी देखिए, रावण को देखिए, गलत कर रहा था, माता सीता को उठा के लेके आया था, कितने लोग उसको सजेशन देते हैं ना, मंदोदरी देती है, कुंभकर्ण देता है, विभीषण देता है, किसी का नहीं सुनता है, उसको जो करना है वही किया और अंत में विनाश हुआ। लेकिन भक्त जो रहता है, तुरंत उसको सजेशन मिलता है, फीडबैक मिलता है, वो अपना दिशा बदल देता है। तो ध्रुव महाराज को जैसे ही स्वयंभू मनु बोलते हैं कि बेटा ध्रुव महाराज अभी आप आगे मत मारो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप मारेंगे तो यक्षो जो है, यक्षों का राजा कौन है, अलकापुरी का राजा कौन है, कुबेर महाराज। तो कुबेर जो है बहुत बड़ा देवता है, जो कि भगवान कृष्ण का सेवा करता है, वो गुस्सा करेगा, क्योंकि उनके जो प्रतिनिधियों को मार रहे हो ना आप, तो आप बदला ले रहे हो, लेकिन जो राजा है कुबेर जो है वो भी भगवान का भक्त है, तो कुबेर आपसे अगर संतुष्ट नहीं रहेगा तो आपका भक्ति में बाधा आएगा। तो फिर ध्रुव महाराज सोचने लगे, ये भी बात सही है, तो तुरंत ध्रुव महाराज युद्ध करना छोड़ देते हैं और रिटर्न आ जाते हैं। तो जब आ जाते हैं तो ये जो 12वां अध्याय है वहां से शुरू होता है। ध्रुव महाराज युद्ध करना समाप्त कर दिए हैं और आगे क्या हो रहा है अभी देखेंगे 12वां अध्याय में। कुबेर का क्या प्रतिक्रिया हो रहा है ध्रुव महाराज के तरफ से, उसको सुखदेव गोस्वामी यहां पर बता रहे हैं। तो पहला श्लोक में जैसे ध्रुव महाराज युद्ध करना छोड़ देते हैं तो बोला जाता है कि कुबेर वहां पर प्रकट होते हैं। अब कुबेर देख रहे हैं ध्रुव महाराज का जो गुस्सा है शांत हो गया, तो कुबेर वहां पर प्रकट होता है और प्रकट होकर ध्रुव महाराज का बोलते हैं क्या, द्वितीय अध्याय आप दिखा सकते हैं श्लोक 4.12.1 से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे श्लोक क्रमांक बता रहा हूँ आप दिखा सकते हैं। तो दूसरे श्लोक में कुबेर बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज को आप जो है ना अनग है, अभी देखा जाएगा तो कितने सारे लोग को मारे हैं लेकिन फिर भी बोले अनग। अनग मतलब क्या है, आप पाप कुछ नहीं किए। तो कुबेर महाराज बोले कि आप जो किए कोई भी भाई करता, किसी भाई का भी अगर क्षत्रिय का वध हो जाता है तो उसको प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए करेगा, तो आपने जितना मारना था मार दिया और अभी अपने नहीं मार रहे, तो इसलिए आपको कुछ पाप नहीं लग रहा, ये आपका ड्यूटी था। इसलिए उनको द्वितीय अध्याय में क्या बता रहे हैं, अनग बता रहे, मतलब कोई आपसे पाप हुआ नहीं है। देख सकते हैं अनग 4.12.2, ठीक है। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि एक्चुअली ना ये आपका कुछ दोष नहीं है, ये एक्चुअली समय का दोष है। सर्वम काल कृतम मन्ये, ये कौन बोले थे, पितामह भीष्म भी बोले थे ना, जब पांडव लोग आते हैं बोलते हैं कि अहो कष्टम, अरे आप लोग धर्म राजा के पुत्र हैं, धर्म हैं, वायु के पुत्र हैं और आप सब देवताओं के पुत्र होने के बावजूद तो इतना कष्ट आपको भोगने पड़ा। तो पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि ये आपका कुछ भी इसमें गलती नहीं है, ये कैसे हो रहा है, सर्वम कालम कृतम मन्ये, ये सब समय का प्रभाव है। भगवान का कुछ लीला करना है और समाज को कुछ सिखाना है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, एक निमित्त मात्र बनाए, इसलिए है युधिष्ठिर महाराज आपका कुछ गलती नहीं है, ये समय का प्रभाव है। ठीक उसी तरह कुबेर भी यहां पर बता रहे हैं ध्रुव महाराज को तीसरे श्लोक में कि आपका कुछ गलती नहीं है, ये समय का प्रभाव है और समय के कारण ये सब हो रहा है। फिर चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि एक्चुअली ना ये जो शारीरिक जो संपर्क है ना बहुत घनिष्ठ रहता है, बॉडीली कॉन्सेप्ट बोलता है ना, इसको हम पार करना बहुत कठिन है। तो इनडायरेक्टली कुबेर महाराज ध्रुव जी को एक उपदेश दे रहे हैं कि आपका भी शारीरिक संपर्क था उत्तम के साथ, भाई थे ना, तो इसके कारण आपको भी गुस्सा आया और गुस्से में आपने भी आक्रमण किया और मारा, तो ये नॉर्मल है, जो भी इस भौतिक दुनिया में रहेगा ये शारीरिक संपर्क बहुत घनिष्ठ रहता है, इसको पार करना आसान नहीं है, है? बॉडीली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं भावार्थ में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये शारीरिक संपर्क जो है मैं तुम मेरा तुम्हारा है, लेकिन जैसे ही हम भक्ति में आ जाते हैं हम ऐसा भेदभाव नहीं करते। तो प्रभुपाद एक उदाहरण बता रहे हैं, अभी देखिए हम हाथ में भगवान का सेवा करते हैं, सपोज भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, पैर में हम भगवान के मंदिर को आते हैं, चल के आते हैं, अभी हाथ पैर जो है दोनों भगवान का सेवा में लगाए, लेकिन हाथ और पैर कभी कंपेयर नहीं करते हैं, मैं भगवान का श्रृंगार करता हूँ, मैं कितना अच्छा सेवा करता हूँ, ये पैर चल के आता है मंदिर में, नहीं कभी भी तुलना नहीं करते हैं। दोनों खुश हैं क्योंकि दोनों भगवान का सेवा में लगे हैं और दोनों कभी कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि दोनों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान का सेवा करना। उसी तरह जब भक्तों के समूह में हम आते हैं, कोई भक्त छोटा सेवा करता है, कोई भक्त बड़ा हनुमान जैसा सेवा करता है, सामने रहता है फ्रंट लाइन में, कोई भक्त बैकग्राउंड में रहता है और क्या सेवा करता है 10 साल तक हमको पता भी नहीं रहता है, वो पीछे रहते सेवा करता है और किसी को पता भी नहीं रहता है, लेकिन भगवान को सब पता है, भगवान सबके हृदय में है और बराबर भगवान देखते हैं। और महाराज बोलते हैं कि राधाना स्वामी महाराज बोलते हैं कि कोई फ्रंट लाइन में रहकर सेवा कर रहा होगा, अगर उसका भाव अच्छा नहीं रहेगा, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा तो भगवान को पसंद नहीं आएगा। उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा रहेगा, क्वांटिटी बड़ा है, बड़ा बड़ा सेवा दिख रहा है, लेकिन भाव अंदर कुछ और है, मैं मेरा सोच के कर रहा है, मैं कर रहा हूँ सोच रहा है, तो भगवान को वो नहीं भाता है। लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड में रहकर सेवा कर रहा होगा, क्या सेवा कर रहा होगा लोगों को पता भी नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा भाव में सेवा कर रहा है, गोपीर पद कमले और दासानु दासानु दास, तो भगवान का नजर बराबर उसके ऊपर रहता है और उसको देखते हैं। तो ये चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए हमारा भक्ति भक्तों का समूह में हमारा भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5 से 6 श्लोक में बता रहे हैं कि ये कुबेर महाराज ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि भगवान का हमको भक्ति करना चाहिए। तो भगवान का क्वालिटीज बता रहे हैं, भगवान अधोक्षजा है। अधोक्षजा मतलब जो हमारे इंद्रियों से हम उनको नहीं जान पाएंगे, अधोक्षजा है। फिर बता रहे हैं भगवान क्या है, भगवान जो है हर जीव के आत्मा परमात्मा होकर हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। फिर बता रहे हैं भगवान विग्रह, भगवान का एक आकार है। फिर बता रहे हैं भगवान अवभाव्य, मतलब वो कभी जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर भगवान का क्वालिटीज बता रहे हैं। और 7वां श्लोक में बता रहे हैं कि हे ध्रुव महाराज, कृपा करके आप कुछ मेरे से वरदान मांग सकते हो, आस्क सम बेनेडिक्शन। तो कुबेर बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज को। आश्चर्य लगता है ना, ध्रुव महाराज भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं और कुबेर तो एक साधारण देवता है, लेकिन देवता एक बोल रहे हैं भगवान के परम वैष्णव को बोल रहे हैं कि कुछ वरदान मांगिए। तो देखिए अभी तो ध्रुव महाराज क्या वरदान मांगते हैं, अभी बता रहे हैं 8वां श्लोक में बता रहे हैं। तो ध्रुव महाराज सोचे नहीं, अरे मुझे क्या वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, अपना तो औकात देखो, एक साधारण देवता हो, मैं परम वैष्णव प्योर डिवोटी हूं, मुझे क्या। तो ध्रुव महाराज सोचे नहीं, तुरंत ध्रुव महाराज ने मौका का पूरा फायदा उठाया। क्या वरदान मांगे, कि दो वरदान मांगे। एक वरदान मांगे कि हे कुबेर महाराज, मुझे भगवान का ऐसा अटूट श्रद्धा मिले, पहला वरदान। दूसरा मांगे कि 8वां श्लोक में मुझे भगवान का अटूट स्मरण मिले, विष्णु स्मरणम, है हमेशा स्मरण भगवान का हो। ये दो वरदान मांगते हैं ध्रुव महाराज। तो इसके ऊपर आचार्यगण बड़ा एक टीका लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2 पेज का टीका लिखते हैं कि कैसे हो सकता है ये, एक देवता एक परम वैष्णव को कैसे वरदान दे सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है ना सबके ऊपर, ये एक साधारण देवता है। हम बोलते हैं देवता मतलब मिश्र भक्त बोलते हैं, और इधर ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं। एक मिश्र भक्त शुद्ध भक्त को वरदान कैसे दे सकता है, वो भी भगवान का अटूट श्रद्धा दे रहा है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बड़ा विश्लेषण किए, मैं सारांश में बताऊंगा। तो देखिए पहला चीज तो है ध्रुव महाराज क्या वरदान मांगते हैं, अटूट श्रद्धा और भगवान के ऊपर अटूट स्मरण मांगते हैं। तो देखिए ये बहुत सबसे ये चाला ये सब जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसा वरदान मांगेगा। वो स्टोरी आता है ना, एक राजा जब डूब रहा था, 3 व्यक्ति आते हैं उसको बचाते हैं, और डूबते डूबते राजा को 3 व्यक्ति बचाते हैं, तो राजा बहुत खुश हो जाता है, बोलते कि मांगो क्या मांगना है। तो पहला जो व्यक्ति रहता है वो मांगता है कि मुझे राजा जी, मुझे कुछ नौकरी नहीं है, एक नौकरी मुझे दे दीजिए। राजा बोला ले लो नौकरी, नौकरी एक दे देता है राजा। तो पहला व्यक्ति खुश होकर चला जाता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उसके पास घर नहीं था, तो दूसरा व्यक्ति क्या मांगता है, मुझे घर दे दीजिए। तो राजा बोलते हैं ठीक है घर ले लो, तो उसको अच्छा घर मिल जाता है। तीसरा व्यक्ति जो रहता है वो राजा को क्या बोलता है, मुझे आपके साथ दोस्ती चाहिए। तो राजा थोड़ा सोचता है दोस्ती चाहिए, ठीक है आपको दोस्ती मिल जाएगा, मेरे साथ आपका आज से दोस्ती है, बोल के दोस्ती दे देते हैं, संपर्क रिलेशन हो जाता है, फ्रेंडशिप, और तीनों के तीनों चले जाते हैं। और कुछ महीनों के बाद राजा को स्मरण आता है कि अरे वो तीसरा जो व्यक्ति था मुझे मेरे साथ फ्रेंडशिप मांगा था, दोस्ती मांगा था, चलो उनके घर थोड़ा दोस्त के घर जाते हैं, प्रसाद लेके आते हैं। तो मंत्री बोलते अरे राजा जी आपको पता है वो कौन है, बोले कौन है, अरे वो बड़ा सबसे बड़ा भिखारी है, घर नहीं है, घर जाने के लिए रोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो राजा बोलते क्या बात करते हो, वो तो मेरा मित्र है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुरंत उसके लिए एक बड़ा घर बनाया जाए, एक बड़ा सुंदर रोड बनाया जाए, और उसको जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी दीजिए। और देखा जाएगा तो व्यक्ति मांगा नहीं था कुछ, राजा के साथ बस क्या मांगा था, संपर्क मांगा था, तो अपने आप सब कुछ उसको आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो चालाक व्यक्ति रहेगा ना, वो भगवान को मांगेगा नहीं, भगवान मुझे मेरे लिए एक अच्छा जॉब दे दीजिए, भगवान मेरा घर में पैसा दे दीजिए, ये नहीं मांगेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या मांगेगा, अटूट श्रद्धा, भगवान कृपा करके मुझे आपका भक्त बना दीजिए। तो ये जो व्यक्ति मांगता है अपने आप भगवान क्या देखेंगे नहीं, जो व्यक्ति भगवान का भक्त रहेगा है भगवान क्या उसका रक्षा नहीं करेंगे। भगवान खुद बोलते हैं सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा सुचो, कहीं अगर सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आता है मैं सब कुछ उसका देखभाल करूंगा। तो ये चीज प्रभुपाद यहाँ पर भावार्थ में बता रहे हैं कि इसलिए ध्रुव महाराज सिखा रहे हैं कि क्या भगवान को मांगना चाहिए वरदान, कि आपके प्रति मेरा भक्ति चाहिए। तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ध्रुव महाराज कुबेर जब बोले उनको कि कुछ मांगो, तो ध्रुव महाराज ऐसा उनको वरदान क्यों मांगते हैं? क्योंकि अगर आपको पता रहेगा, पहला अध्याय में जब ध्रुव महाराज सब यक्षों को मार रहे थे, स्वयंभू मनु आए थे वहां पर और बोले कि तुम जिनको मार रहे हो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? यक्ष हैं, और जो यक्ष हैं वो कुबेर के प्रजा हैं। तुम इतने सारे यक्ष को जो मार रहे हो, कुबेर उससे गुस्सा हो रहा है। और कुबेर कौन है? वो भी भगवान कृष्ण का भक्त है। और कुबेर को अगर आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो आपके भक्ति में बाधा आएगा। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर सिखा रहे हैं स्वयंभू मनु की। जब हम भक्ति करते हैं, हमको लग रहा है कि मैं अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ और इस भक्ति में बड़ा बड़ा सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो वैष्णव संघ है हमारे साथ, अगर किसी वैष्णव को हम दुख पहुँचाते हैं हमारा सेवा में, तो फिर वो जाके आगे जाके हमारा भक्ति में बाधा करता है। तो ये चीज़ स्वयंभू मनु बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं, बेटा ध्रुव, तुम अगर कुबेर को प्रसन्न नहीं करोगे तो आगे जाकर तुम्हारा भक्ति में बाधा आएगा। तो ये चीज को ध्रुव महाराज याद रखे थे। और जैसे ही कुबेर ने बोले कि कुछ मांगो, तो तुरंत उन्होंने मांग लिया, वरदान मांग लिया। तो इससे क्या होगा? कुबेर प्रसन्न होंगे, क्योंकि कुबेर का बात सुने और कुबेर से विनम्र होकर मांग रहे हैं। तो इस चीज को ध्रुव महाराज अपने मन में रखते हुए कुबेर जी को वरदान मांगा। और इससे जब कुबेर उनको तथास्तु करके वरदान देते हैं, तो ये इसमें साबित हो जाता है कि कुबेर ध्रुव महाराज के प्रति कुछ भी अभी भावना नहीं रखें, कुछ भी गुस्सा नहीं रखें, सब कुछ वो माफ कर दिए। तो इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि उन्होंने मांगा वरदान। और एक चीज है, कोई भी देवता अगर कुछ आपको बोलते हैं कि वरदान मांगिए, तो हम मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं? भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति मांग सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण आता है वृंदावन में भी, इसी समय आता है, गोपियां भी कात्यायनी माता को भी वरदान मांगते हैं। एक महीने का जो उन्होंने भी तपस्या किए थे, और अंत में क्या मांगते हैं? भगवान कृष्ण को अपना स्वामी के रूप में मांगते हैं। तो गोपियां भी सिखा रहे हैं कि हर देवताओं को हम, क्योंकि वो भी भगवान का सेवा में लगे हैं, बड़े बड़े सेवा में लगे हैं, तो उनको भी हम वरदान मांग सकते हैं। क्या? जैसे वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, हम भी भगवान का सेवा में नियुक्त हो जाए। और कुबेर बहुत प्रसन्न हो जाता है, और उसके बाद कुबेर उनको वरदान दे के चले जाते हैं। तो उसके बाद 10 से 16 श्लोक जो है, ध्रुव महाराज किस प्रकार शासन करते हैं और अंत में कैसे वो वैराग्य लेते हैं, उसके ऊपर बताया गया है। तो बोला जाता है कि ध्रुव महाराज बहुत सारे यज्ञ किए और बहुत सारा दान भी दिए और दान देते थे, और ध्रुव महाराज उसके साथ भक्ति में भी हमेशा संलग्न रहते थे। और 12वां श्लोक में बताया गया कि ध्रुव महाराज का गुण क्या क्या है बताया गया है। तो श्लोक पढ़ेंगे, 12वां श्लोक। तमेव शील संपन्नम ब्राह्मण्यम दीन वत्सलम गोप्ताराम धर्म सेतूनाम मे निरे पितरम प्रजा। तो यहां पर बताया गया कि एक राजा जो शासन करता है उसका क्या क्या अच्छा गुण रहना चाहिए, यहां पर बता रहे। तम एवं शील संपन्नम, हे ध्रुव महाराज, आपके अंदर वो सारा गुण है जो कि एक राजा के पास रहना चाहिए। पहला गुण क्या है? ब्राह्मण्यम, आप सब ब्राह्मण जाति को आप उनको सम्मान करते हैं। दूसरा, दीन वत्सलम, और जो भी दीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके प्रति आपका स्नेह रहता है, दीन वत्सलम। फिर गोप्ताराम धर्म सेतु नाम, गोप्ताराम मतलब रक्षा करना, गुप्त, गोप्ताराम धर्म सेतु नाम, धर्म का हमेशा आप रक्षा करते हैं। मेनिरे पितरम प्रजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेनिरे मतलब आप सोचते हैं, पितरम प्रजा, प्रजा का पिता की तरह आप देखभाल करते हैं, राजा के तरह नहीं। आप जैसे एक पिता संतान के तरफ उसका प्रेम रहता है, उसी तरह आप सारा प्रजा को एक पिता के समान प्रेम देते हैं। तो ये चार गुण जो है, इसके कारण ध्रुव महाराज को माना गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ एक राजा का पदवी उनको दिया जाता है। और किस तरह प्रभुपाद बोलते हैं कि एक राजा को शासन करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो प्रभुपाद एक भावार्थ में बता रहे हैं कि ब्राह्मण्यम, तो ध्रुव महाराज कैसे राजा होकर सब ब्राह्मण के प्रति वो सम्मान करते थे, इस तरह प्रभुपाद बोले इस कलयुग में जो हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इस सोसाइटी में हम ब्राह्मणों को बना रहे हैं और यहाँ पर जो भी वैष्णव रहते हैं वो सब इस ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को फॉलो करते हैं और सब अपने जीवन उसके ऊपर जीते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। इसलिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस्कॉन सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, बोलकर प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं। फिर 13वां श्लोक में बताया गया है कि कैसे ध्रुव महाराज 36,000 साल तक अपना शासन करते हैं, क्योंकि उनको भगवान का वरदान मिला था कि 36,000 साल तक वो शासन करेंगे और जब तक शासन करेंगे उनका इंद्रिय शिथिल नहीं होगा, उनका इंद्रिय स्ट्रांग रहेगा, तो उसके ऊपर बताया गया है इस श्लोक में। फिर आगे 14 से 16 श्लोक में बताया गया कि जैसे ही 36,000 साल हो जाता है ध्रुव महाराज पूरा अपना शासन से त्याग करते हैं और जाके जंगल के तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बद्री का आश्रम जाते हैं। 17वां श्लोक में बताया गया है कि ध्रुव महाराज रिटायर्ड लेते हैं और बद्री का आश्रम जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेसन हम सीख सकते हैं कि बाय बिकमिंग इररिलेवेंट एट द राइट टाइम वी बिकम रिलेवेंट फॉर द पीपल। सही समय पर हम त्याग करके लोगों के प्रति हम सही आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी देखिए ध्रुव महाराज पूरा स्ट्रांग थे, उनका इंद्रियां भी काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो संन्यास ले लिए, त्याग कर लिए, सब राज्य को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अभी उनको समझ में आ गया कि अभी ये सही समय है, त्याग करके मुझे बद्री का आश्रम जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। उसके कारण हम ध्रुव महाराज का चरित्र आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हमारे पास ये गुण नहीं रहेगा, मरते दम तक कुर्सी को पकड़ के रहेंगे, शासन करते रहेंगे जैसे आजकल होता है, तो फिर क्या होता है, मरते दम तक पकड़ के रहेंगे, हमारा इंद्रियां भी काम नहीं कर रहा है, मन भी काम नहीं कर रहा है, क्या सही है क्या गलत हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन कुर्सी के प्रति आसक्ति होने के कारण उसको पकड़ के रखें, तो उससे क्या हो रहा है, शासन भी ठीक नहीं होगा, प्रजा भी आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे और आपका भजन भी नहीं कर पाएंगे अंत समय तक, तो फिर क्या मतलब होगा मनुष्य जीवन का, अंत नारायण स्मृति कैसे करेंगे फिर। इसलिए कर्तव्य हमको करना चाहिए जब तक हमारा कर्तव्य बनता है, और जैसे ही समय आ जाता है, इसलिए बोला जाता है 25 साल तक ब्रह्मचार्य, फिर 25 से 50 गृहस्थ, फिर 50 के बाद वानप्रस्थ, फिर 75 के बाद संन्यास, तो ये बहुत सिस्टमेटिक है जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है। तो यहाँ पर प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर 17 से लेकर 35 श्लोक में ध्रुव महाराज किस तरह ध्रुव लोक को जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो 17वां श्लोक में बोलते हैं कि ध्रुव महाराज बद्री का आश्रम में चले जाते हैं और अष्टांग योग करना शुरू कर देते हैं। तो चक्रवर्ती बात बोलते हैं कि अरे लोक का प्रश्न आएगा, ये तो परम वैष्णव थे, ये अष्टांग योग क्यों करना शुरू कर दिए, ये तो भक्ति योग करना चाहिए। तो बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो जब बद्री का आश्रम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे योगी थे, योगी भरे हैं वहां पर, अभी इतने सारे योगी हैं तो उनके सामने अगर सीधा भक्ति योगी भक्ति योग चालू करेंगे तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा ना, अरे ये किधर से आ गया, ये क्या भक्ति योग कर रहा है, अष्टांग योग करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा ताल मिलाने के लिए तो ध्रुव महाराज पहले अष्टांग योग शुरू किए, यम नियम आसाना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब करने लगे, तो सबको उनको भी लगा कि हमारा जैसा ही है, ठीक है हमारा जैसा ही है सब, और जैसे ही थोड़ा रिलेशन हो गया थोड़े समय के बाद सब कुछ छोड़ के भक्ति योग शुरू करने लगे, तो ऐसा बताते हैं चक्रवर्ती बात। तो इस तरह तपस्या करने लगे और बोला जाता है कि 18वां श्लोक में किस तरह ध्रुव महाराज के कुछ ही समय के अंदर ही ध्रुव महाराज के पास सब कुछ वो अष्ट सात्व के विकार आने लगता है, आनंद भाष्प कलया, आंखों से अश्रु बहना शुरू हो जाता है, हृदय में अष्ट सात्व के विकार आने चला जाता है, सब अष्ट सात्व के विकार उनका आता है। और फिर बोला जाता है कि अंत में मुक्त लिंग उनका जो आत्मा है और उनका जो सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर एक एनालॉजी बताते हैं कि एक नारियल है, नारियल जब पेड़ से तोड़ देते हैं उसके अंदर नारियल का जो अंदर का जो पल्प रहता है, जैसे ही नारियल सूखना शुरू हो जाता है और जैसे ही सूख जाता है और नारियल को आप हिलाएंगे तो आवाज़ आना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसका अंदर का जो पल्प रहता है और नारियल का शेल को छोड़ देता है और वो हिलने लगता है, इसके कारण आवाज़ आता है। तो प्रभुपाद उस उदाहरण को लेकर समझाते हैं कि भक्ति में भी ऐसा होता है हमारा आत्मा के साथ, कैसे? तो पहले अभी हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर पकड़ के रखा है, आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे भक्ति करना शुरू करते हैं धीरे धीरे आत्मा जो रहता है सूक्ष्म शरीर को छोड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है, फिर आवाज होना शुरू होगा। तो उसका मतलब क्या है, जब मृत्यु आता है, मृत्यु में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा को पकड़ के दूसरे शरीर में लेके जाता है, मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है, और वही सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके दूसरा शरीर, अगर खराब काम किए रहेंगे तो कुत्ते के शरीर में लेके जाएगा। तो इसलिए मन सेम रहे, तो बोलते हैं ना ये आदमी ऐसा तो देखो ऐसा हो रहा है इस शरीर में भी, तो मन बुद्धि अहंकार सेम है, वो चेंज नहीं होता है, तभी तो हमने जो किया है वो प्रतिक्रिया लेके जाएगा ना दूसरा शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके दूसरे शरीर में लेके जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है, जैसे वो नारियल सुख के है, अपना जो बाहर का जो रहता है जो सेल से अलग हो जाता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। तो मृत्यु के समय क्या होगा, खाली आत्मा निकलता है, सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है, जिसके कारण आत्मा सीधा भगवत धाम चला जाता है। तो ये प्रभुपाद उदाहरण में बता रहे हैं, ये बोलते हैं मुक्त लिंग का ये अर्थ है। और जैसे ही ये स्थिति में ध्रुव महाराज आ जाते हैं, तो बोला जाता है कि वहां पर एक सुंदर सोने का विमान ऊपर से नीचे आता है, है? और उस विमान में ध्रुव महाराज देखते हैं कि भगवान के दो विष्णु दूत वहां पर रहते हैं, नंद उपनंद रहते हैं, और ध्रुव महाराज देख के आश्चर्य हो जाते हैं, पहली बार देख रहे हैं, साधारण विमान नहीं है, वैकुंठ विमान आ रहा है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज भी जाते हैं ना वैकुंठ विमान में, तो ये भी भागवतम में वर्णन हुआ है कि कैसे ध्रुव महाराज भी जा रहे हैं वैकुंठ विमान में। तो वैकुंठ विमान नीचे आता है, और पहले तो ध्रुव महाराज देख के आश्चर्य हो जाते हैं, क्या करूं अभी, मतलब सामने अचानक देख रहे हैं, पूरा भ्रमित हो जाते हैं। और उस समय बोला जाता है कि ध्रुव महाराज को क्या बोलना चाहिए, क्या, जैसे छोटे 5 साल के आयु में विष्णु को देख के वो भ्रमित हो गए थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हो जाते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि सीधा ध्रुव महाराज भगवान का हरिनाम जप करना शुरू कर देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद भावार्थ में बहुत सुंदर टिप्पणी दे रहे हैं, बोलते कि आपको कुछ आए ना आए, अगर हरि नाम का जप किया तो संपन्न हो जाता है जो भी पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये कलयुग में है रामबाण, आपको हरि नाम जप करना है, कोई भी पूजा करो कुछ भी करो, अगर आपको अगर कुछ किधर लगता है कि ठीक से नहीं हो रहा है, हरि नाम का जप कर दीजिए। हम देख सकते हैं प्रभुपाद का भी जब संन्यास दीक्षा हो रहा था, है दीक्षा चल रहा था, और इधर उनका एक गुरु भाई हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे, तो और एक गुरु भाई जो प्रभुपाद का दीक्षा समारोह कर रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे ना, बहुत सारा मंत्र डिस्टर्ब हो रहा था, बोले कि थोड़ा आवाज कम करो, तो फिर वो धीरे धीरे कीर्तन करने लगे हरे कृष्णा, तो जैसे ही उधर सिर के प्रभुपाद बोले आवाज बढ़ाओ, तो फिर से हरिनाम जप करना शुरू कर दे, जोर से कीर्तन करने। तो देख सकते हैं प्रभुपाद का श्रद्धा कितना अटूट है हरिनाम के प्रति, बोले कि आप जो मंत्र उच्चारण सब कर रहे हो ठीक है, लेकिन कलयुग में क्या है, हरिनाम ही सब कुछ है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतया यजतोमके द्वापरे परिचर्याया कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कृते जो सत्ययुग में हम ध्यान करते थे, त्रेतायुग में जो यज्ञ करते थे, द्वापर युग में जो भगवान का अर्च विग्रह का पूजा करते थे, तद हरि कीर्तनात्, सेम जो परिणाम आपको मिलेगा कलयुग में भगवान का कीर्तन करके। तो इसके ऊपर प्रभुपाद बहुत बड़ा परपोट लिखते हैं इस हरिनाम के ऊपर। फिर वहां पर देख सकते हैं कि नंद सुनंद बोलते हैं कि हे ध्रुव महाराज, आपको वैकुंठ जाने का समय हो गया, कृपा करके विमान में बैठिए। तो देखिए अभी बहुत सुंदर यहाँ पर ध्रुव महाराज सिखा रहे हैं कि किस तरह ध्रुव महाराज का जो एक वैष्णव का क्वालिटीज रहता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि पहले बता रहे ध्रुव महाराज क्या बोले, ध्रुव महाराज पहले गए स्नान किए, स्नान करके आए और बद्रिक आश्रम में आया है विमान, तो बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज तो अकेले नहीं है, बहुत सारा बाकी योगीज हैं, अष्टांग योगीज हैं। तो ध्रुव महाराज जाके जितने सारे वहां पर योगी थे सबको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, और अंत में जाके ध्रुव महाराज उस विमान का परिक्रमा करते हैं, फिर बैठते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि क्या जरूरत था, देखा जाएगा तो ध्रुव महाराज तो परम वैष्णव है और ये साधारण योगी है, और उनके लिए विमान आया, सोचो आपको इतना अपने प्रयास कर रहे हैं और आपका लॉटरी खुलता है, तो कैसे एक्साइटमेंट रहेगा आपको लॉटरी टिकट प्राप्त करने के लिए। वैसा ही हुआ है ना, ध्रुव महाराज को बैक टू गॉडेड जाने के लिए एयरप्लेन आया है, विमान आया है, लेकिन वो परिस्थिति में भी ध्रुव महाराज अपना कर्तव्य को नहीं भूल रहे, सबको प्रणाम कर रहे हैं और सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये रहता है एक वैष्णव का क्वालिटी। देखिए ये सिखा रहे हैं कि सेंसिटिविटी इन डीलिंग्स विद द योर को डिवोटीज, जहाँ पर हम रहते हैं हमको कितना सेंसिटिव रहना चाहिए जो हमारे जो पास में जो डिवोटीज रहते हैं उनके साथ डीलिंग्स में। ये ध्रुव महाराज यहाँ पर सिखा रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, सबको सम्मान करते हैं और अंत में जाके जो वैकुंठ विमान रहता है उसमें जाके चढ़ते हैं। तो यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं और बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को कभी गर्व नहीं आया था। व्यक्ति के पास अगर गर्व रहता तो ये नहीं कर पाता, वो डायरेक्ट जाके चढ़ जाता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ध्रुव महाराज थोड़े भी गर्वित नहीं थे और वो बहुत नम्र थे। तो यही जो है एक वैष्णव का सदाचार है, जो नम्रता है ये एक वैष्णव का आभूषण है जो कि ध्रुव महाराज से हम सीख सकते हैं। और उस समय भी बोला जाता है कि जिस जैसे ही ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने के लिए जा रहे हैं और वहां पर एक और एक व्यक्ति वहां पर प्रकट हो जाता है। कौन आता है? मृत्यु। तो मृत्यु बोलता है कि अरे हमारा सेवा आपने छीन लिया इस संसार, ये क्योंकि मृत्यु लोक है, हमको एक स्थूल शरीर मिला है, तो जिसको भी संसार से अगर जाना है तो मृत्यु तो आना ही पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज को आके बोलते हैं कि अरे हमारा सेवा भी थोड़ा करने दीजिए। तो मृत्यु खुद आते हैं ध्रुव महाराज के सामने, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और ध्रुव महाराज क्या करते हैं, मृत्यु के सर के ऊपर उनका पैर रख के विमान में चढ़ते हैं। मतलब मृत्यु उनका स्टेप्स जैसा काम करता है, जैसे स्टेप्स में चढ़ के मंदिर में आते हैं ना, वैसे मृत्यु के ऊपर पैर रख के चढ़ के जाते हैं। तो बोला जाता है कि जो परम वैष्णव रहते हैं भगवान को भक्ति करके, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बदल जाता है और कुछ भी उसमें भौतिक कामना नहीं रहता है, जिसके कारण अगर सूक्ष्म शरीर बदल गया तो उनका जो भौतिक शरीर भी बदल जाता है। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि उनके सेम शरीर में भगवान धाम गए, स्वयं तुकाराम महाराज गए, पांडव गए हैं, तो उसी तरह ध्रुव महाराज भी गए हैं। तो लेकिन मृत्यु उनका सेवा करने के लिए आते। तो एक बार हम कथा कर रहे, तो एक व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछा कि आप बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं हरि नाम करो, ये करो ये करो, कि आपको मृत्यु नहीं आएगा क्या, आप नहीं मरेंगे क्या? तो मैं बोला मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, मृत्यु लोग है तो मरेंगे ना, कौन नहीं मरेगा। लेकिन वहां पर एक फोटो मैंने लगाया था सेंटर में, तो बोला ये फोटो देखिए। तो उस फोटो में क्या था, एक एक बिल्ली अपना बच्चा को पकड़ के लेके जा रही है और उसका पार्टीशन था, दूसरे में एक फोटो था बिल्ली एक चूहा को भी पकड़ा है। तो मैं बोला कि फोटो में आप देख रहे हैं? बोला हाँ। तो बिल्ली मुंह में दोनों को पकड़ा है? बोला हाँ दोनों को पकड़ा है। तो ये जो मुंह में पकड़ा है ये मृत्यु है, लेकिन जो चूहा को पकड़ा है वो आप है और जो बिल्ली जो अपना बच्चा को पकड़ा है वो डिवोटीज है। तो वह डर गया, बोले फर्क है कि नहीं? बोले हम बोला फर्क तो है, बाहर से सेम दिखता है, तो वैसे मृत्यु सेम है, लेकिन जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, जब मृत्यु आता है तो किनको दर्शन करते हैं वो लोग? यमदूत को दर्शन करते हैं। बोलते हैं यमदूत को देख के ही उनका बोलते हैं एक दो नंबर हो जाता है, इतना भयानक दिखते हैं यमदूत, है जैसे अजामिल ने देखा है। लेकिन जो परम वैष्णव रहते हैं उनको भी मृत्यु आता है, लेकिन वो किनको दर्शन करते हैं? विष्णु दूत को दर्शन करते हैं, देख के मात्र ही आनंद आता है। इसलिए जो भक्त शरीर छोड़ते हैं, हंस हंस के शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु आएगा लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, आकाश और पाताल का अंतर है। तो वैसे हमको समझना पड़ेगा मृत्यु के बारे। इस तरह ध्रुव महाराज को मृत्यु आता है और मृत्यु जो आता है सेवा करता है और ध्रुव महाराज उसके ऊपर पैर रख के जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त शरीर छोड़ते नहीं है, वो सेम शरीर में जाते हैं और कभी कभी शरीर छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति का जो अंग है उसको गोपनीय रखने के लिए ऐसा कभी कभी लीला करते हैं। जो शुद्ध भक्त रहते हैं कभी कभी शरीर छोड़ते नहीं, सेम शरीर में चले जाते हैं, और कभी कभी शरीर छोड़ते हैं ताकि ये भक्ति को गोपनीय रखने कारण, उसका ये कारण के कारण शरीर छोड़ते हैं। तो ये कारण है। फिर जैसे ही ध्रुव महाराज विमान में बैठते हैं और विमान धीरे 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 ऊपर जाना चालू हो जाता है, सारा स्वर्ग में पूरा ढोल नसारा सब बजने लगता है, सब अप्सराए नाचने लगते हैं, पुष्प वृष्टि होने लगता है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ये एक चीज जो कि बहुत रेयर है देखने के लिए, कोई व्यक्ति भगवान के वैकुंठ धाम जाता है तो सब देवताएं गाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं और ध्रुव महाराज जा रहे हैं। और उस समय ध्रुव महाराज को एक स्मरण आता है, बोलते रुको 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 रुको, बोले सब लोग अरे क्या हो गया जा रहे हैं अभी, रुको रुको क्या गया? बोले कि अरे मेरी माँ है, माँ को मैंने लिया नहीं। तो विष्णु दूत बोलते कि अरे आगे देखो और एक प्लेन जा रहा है, आगे देखो और एक विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारा माँ बैठे हैं। तो ध्रुव महाराज फिर, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर एक लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं कि देखो उनकी जो माँ थी ज्यादा कुछ ध्रुव महाराज को ऐसा भक्ति में ट्रेनिंग दिया नहीं था। एक चीज बोला था क्या, जैसे ध्रुव महाराज बोले कि मुझे पापा के गोद में बैठना है और सुरुचि बोले कि अगर बैठना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा और मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा फिर जाके बैठ सकते हो गोद में, तो सुनीति ने क्या बोली, बराबर बोली, सही बोली, क्योंकि मैं तो दासी हूँ, तुम्हारे पापा मुझे प्रेम नहीं करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, तो मेरे बात तो कोई सुनता नहीं है। तो अगर वो जो बोली है कि नारायण का पूजा करो, फिर पूजा करने के बाद मृत्यु होगा, मृत्यु होने के बाद उनके पेट से जब जन्म लेंगे तब जाके पापा के गोद में बैठ सकते हैं, वो पूरा सही बोली। तो ध्रुव महाराज बोले तो करना क्या है मुझे, तो अगर आपको नारायण का भक्ति करना है तो आपको मैं सुना है कि जंगल जाके लोग भक्ति करते हैं। जैसे ही सुने ध्रुव महाराज सीधा जंगल चले गए, भक्ति करना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो होता है, नारद मुनि आते हैं, ध्रुव महाराज का थोड़ा परीक्षा करते हैं, अरे बेटा 5 साल का उम्र है, खेलने कूदने का समय है, कोई थोड़ा कुछ बोल देता है गुस्सा करते हैं, फिर गुस्सा छोड़ भी देना चाहिए, जाके खेलो। तो क्या बोले ध्रुव महाराज, रास्ता बताना है तो रास्ता बताओ, नहीं तो अपना रास्ता ले लो। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे बाप रे कितना गर्म है इसका है, बोलते हैं क्षत्रियों का जो खून रहता है कितना गर्म रहता है। बोले ठीक है रास्ता बताएंगे, मैं तो जस्ट परीक्षा कर रहा था। बोले ठीक है, फिर नारद मुनि पूरा बताते हैं भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति किए और 6 महीने में भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन करते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो सुनीति ने एक ही काम किया था, क्या काम किया था, इधर से चलना है रास्ता दिखाया था। तो सुनीति जो है पथ प्रदर्शक गुरु हो गई और नारद मुनि उनके शिक्षा गुरु हो गए, दीक्षा गुरु हो गए। तो सुनीति खाली एक रास्ता दिखाई थी जिसके कारण ध्रुव महाराज ने बोले कि माँ को भी लेके जाना है, और विष्णु ने पहले ही पता था ध्रुव महाराज की इच्छा ये रहेगा, तो तुरंत माँ के लिए भी एक विमान भेज दिया था और माँ को भी लेके जा रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि उसी तरह परिवार में अगर एक संतान भी भक्ति करता है ठीक से तो उसके कारण पूरा माता पिता सबको लाभ होता है। और उसके बाद बोलते हैं कि उसी तरह एक अगर शिष्य भी भक्ति करते हैं अच्छे से तो उसका लाभ गुरु को भी होता है। तो देखिए ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मैं सोचता हूं अगर मेरा एक भी शिष्य अगर भगवान के धाम चला जाए तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये उनका नम्रता है, लेकिन ये लिख रहे हैं भावार्थ में लिख रहे हैं प्रभुपाद कि मेरा एक भी शिष्य अगर भक्ति करके उनका जीवन सफल हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है गोलोक वृंदावन, तो मैं सोचूंगा मेरा जो मिशन है ना गौड़िया मिशन, वो सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो इससे हम सोच सकते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्ति करना और भगवान के धाम जाना कितना रेयर है, इतना आसान नहीं है। इसके कारण बहुत सारा भक्ति है ना, मिश्र भक्ति है, गुणीभूत भक्ति है, प्राधान्यभूत भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, ये बहुत प्रकार के भक्ति है। इसलिए गौरांग प्रभु हमेशा बोलते हैं इस्कॉन में आ गए इसका मतलब नहीं कि बैक टू गॉडेड हो गए, इस्कॉन एक मॉल जैसा है, आपको उसमें क्या चाहिए उसमें आप आकर्षण होकर चले जाएंगे। जैसे मॉल में जाते हैं ना, ये खिलौना रहता है, ये बुक्स रहता है, वो रहता है, व्यक्ति ये देखेगा ये देखेगा उससे आकर्षण होकर उधर ही चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अंदर घुस रहा है एक गोल लेके घुस रहा है, मुझे वो चीज ही परचेज करना है, वो स्टॉल में जाएगा वो परचेज करके निकल जाएगा, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वैसे प्रभुपाद प्रभु जी बोलते हैं कि बहुत सारा चीज इस्कॉन में है, ये है वो है वो है, अगर ऐसे ही घुसेंगे तो ऐसे ही देखते रहेंगे सब कुछ और घूमते रहेंगे। लेकिन हमारा ध्येय पता रहना चाहिए कि हम किस ध्येय से आए हैं, भगवान का शुद्धि अन्य विलासा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण आनुशीलनम भक्ति उत्तमा, अन्य अभिलाषा शून्यम, और कुछ अभिलाषा नहीं रहना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्ति करने का ही एक ही अभिलाषा चाहिए। और क्या करना चाहिए, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ना ज्ञान ना योग ना कर्म, किसी का हमको सहारा लेना नहीं है, हमको लेना है बस भक्ति का सहारा, तब जाके हम ये बोला जाता है उत्तम भक्ति। और इस तरह ध्रुव महाराज चले जाते हैं, कहाँ ध्रुव महाराज जाते हैं, बोलते हैं कि ध्रुव लोक में जाते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज का इच्छा था कि मुझे ऐसा एक लोक चाहिए जो कि मेरा दादा परदादा कोई भी शासन नहीं किया रहेगा। अभी उनका तो स्वयंभू मनु का पूरा भूमंडल है, अभी परदादा ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है, अभी भौतिक दुनिया में तो ऐसा कुछ लोक नहीं है जो इससे बड़े हैं। तो बोला जाता है कि ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने स्पेशल लोक बनाया है, वैकुंठ लोक एक बनाया है जिसको कि ध्रुव लोक बोला जाता है। ध्रुव महाराज जाने के बाद तो उस वैकुंठ लोक में ध्रुव महाराज को स्थान दिए, और जब ध्रुव महाराज वहां जाते हैं उसको ध्रुव लोक भी बोला जाता है। तो ये इसका जो स्थान है भू भुवस्व, तीन जो ग्रह है उसके ऊपर है, महर जन तप उसके नीचे है, ये दोनों के बीच में ये वैकुंठ प्लैनेट है जहां पर ध्रुव महाराज रहते हैं। और बोला जाता है कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये ध्रुव लोक रहेगा, और जब ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा उसके बाद ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक चले जाएंगे, जो भगवान को ऊपर में और एक वैकुंठ। तो अलग अलग जगह पर भगवान का अलग अलग वैकुंठ लोक रहते हैं। जैसे कि कोई धनी व्यक्ति रहता है, पिकनिक करना करने के लिए एक रिसोर्ट रहता है, यहाँ पर एक रिसोर्ट है, नॉर्थ में, साउथ में एक रिसोर्ट है, तो जहाँ भी जाता है उसका फैसिलिटी वैसा ही रहता है। वैसा भगवान का भी अलग अलग जगह पर वैकुंठ लोक रहता है। तो ऊपर एक लोक है, फिर यहाँ पर एक ध्रुव लोक है, वही वैकुंठ लोक है, फिर बोला जाता है ब्रह्मा जी के ऊपर एक वैकुंठ लोक है, ऐसा अलग अलग, क्षीर सागर में एक वैकुंठ लोक है, तो अलग अलग जगह पर भगवान का वैकुंठ लोक ऐसा है। तो यहाँ पर फिर 36 से लेकर 40वां श्लोक पर थोड़ा बताया गया है कि ध्रुव जो ग्रह है इसका क्या क्या इसका क्वालिटीज है उसके ऊपर बोला गया है। फिर आगे जाके बोला जाता है कि ध्रुव जो ग्रह है उसको लेके सारा जितना बाकी ग्रह है, सूर्य चंद्र सब कुछ इस ध्रुव ग्रह को चारों तरफ प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि अगर गौशाला में जो अगर बैल से आपको तेल निकालना है तो उसको एक बांध देते हैं और बैल घूमते रहता है, ऐसा ऐसा तो किधर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसको ऐसा बांधा जाता है कि वैसे ही घूमेगा, परिक्रमा करते रहेगा और तेल निकलेगा बीच से। उसी तरह ये जो बीच का ये जो ध्रुव लोक है और बाकी सब ग्रह बेल के तरह उसके तरह परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ध्रुव लोक जो है वो पाइवट बन गया, वो सेंटर बन गया, तो उसका वो ग्लोरीज है बोल के यहाँ पर बोला गया है। तो ये जब सब कथा हो जाता है ध्रुव लोक का, तो ध्रुव जी का गुरु जी कौन है? नारद मुनि। तो नारद मुनि जब देखते हैं कि अपना शिष्य वैकुंठ चला गया, तो महाराज को तो गुरुजी को तो बहुत प्रसन्न होगा। तो 41 से लेकर 43 श्लोक में बताते हैं कि इस तरह नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव महाराज का प्रशंसा करना शुरू करते हैं। सोचे कोई गुरु शिष्य का प्रशंसा कर रहा है, और गुरु को हमेशा अच्छा लगता है कि जब शिष्य भक्ति में उत्तीर्ण हो जाता है और भक्ति में और बढ़ता है तो गुरु को देख के बहुत प्रसन्न लगता है। तो प्रभुपाद हमेशा कहाँ पर भी नए जगह पर जाते थे तो प्रभुपाद ग्लोरीफाई करते थे, देखो ये यमुना माता जी है, देखो ये प्रभु जी हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, हमेशा प्रभुपाद ग्लोरीफाई करते थे डिवोटीज का, क्योंकि गुरु को हमेशा अच्छा लगता है कि जब शिष्य भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह नारद मुनि भी ध्रुव महाराज का प्रशंसा करने शुरू कर देते हैं। लेकिन नारद मुनि कहाँ पर कर रहे हैं आगे जाके हम देखेंगे। प्रचेता, जो प्रचेता समुन्द्र के अंदर जाके तपस्या कर रहे हैं, तो प्रचेतास को जब नारद मुनि मिलते हैं तो वहाँ पर प्रचेतास को देख के नारद मुनि ध्रुव महाराज का बहुत प्रशंसा करना शुरू कर देता है और बोलते हैं कि देखो ये 5 साल का उम्र में भगवान विष्णु को भक्ति में जीत लिया। अरे इतना भगवान विष्णु को पाने के लिए बड़े बड़े योगी दौड़ते रहते हैं फिर भी भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये छोटा सा नन्ना सा 5 साल का शिशु भगवान विष्णु को भक्ति में जीत लिया, उनको हृदय में पकड़ के रख लिया। द अनकंकरेबल लॉर्ड वॉज कंकर्ड बाई दिस 5 ईयर चाइल्ड, बोल के ध्रुव महाराज बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भक्ति का चमत्कार है, जो भगवान को हम देख सकते हैं, ये दामोदर का मास है, माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांध के पकड़ लिए है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि बड़े बड़े योगी उनके मन के तीव्रता में भी दौड़ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन साधारण एक माता भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध के, उखल में बांध के पकड़ रहे हैं, और कृष्ण रो रहे हैं, देख रहे हैं भगवान कृष्ण आंखों से आंसू आ रहा है। बोलते हैं कि जो कि भगवान कृष्ण का एक अंश है यमराज, जो कि सबको जन्म मृत्यु में रुला रहे हैं, वो भगवान रो रहे हैं। कितना आश्चर्य है लीला है, इसलिए 30 दिन हम ये लीला को गुणगान करते रहते हैं, दामोदर लीला को। तो ये कैसे होता है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्योंकि यशोदा माता जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के माधु वात्सल्य रस में उनसे जड़ित है, तो भगवान भक्त का भक्ति से भगवान खुद हार जाते हैं और माता यशोदा के हाथ में बंधन में आ जाते हैं, इससे भगवान को बहुत आनंद मिलता है। उसी तरह ये 5 साल का ध्रुव महाराज के भक्ति में भगवान बंध गए और उनको अपना दर्शन दिया है। तो इस तरह प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह सभी जो मेरे शिष्य हैं इस्कॉन में, आप लोग आपके इस जीवन में ही भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं, बोल के प्रभुपाद बोल रहे हैं। अगर ध्रुव महाराज पांच साल में भगवान को 6 महीने में भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या 30-40 साल में नहीं कर सकते? बल्कि प्रभुपाद बहुत लॉजिकल परपोर्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इट्स पॉसिबल टू गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम, बोलकर प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं। और अंत में जो 44वां श्लोक से लेकर 52 श्लोक तक फलश्रुति दिया गया कि जो भी इस ध्रुव महाराज का चरित्र को सुनता है उनको क्या लाभ होगा। बोला जाता है कि ध्रुव महाराज का चरित्र जो भी बोलेगा या जो भी सुनेगा उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा, तो हम सबको प्राप्त होगा क्योंकि हम लोग ध्रुव महाराज का चरित्र सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। और क्या क्या लाभ हो सकता है बोल रहे हैं उनको, अगर उसका इच्छा है स्वर्ग जाने का स्वर्ग मिलेगा, धन प्राप्त करने का इच्छा है धन प्राप्त होगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का इच्छा है शुद्ध भक्ति भी मिलेगा। तो जो भी उनका इच्छा रहता है चरित्र सुनने में उसका वो इच्छा पूर्ण हो जाता है, जिस तरह ध्रुव महाराज का इच्छा पूर्ण हुआ था उस तरह जो भी ध्रुव महाराज का चरित्र का गुणगान करता है उनका भी इच्छा पूर्ण हो जाता है। फिर बोला गया कि इसको कैसे गुणगान करना चाहिए, जो भी गुणगान करता है उसको कुछ भी इसके रिटर्न में कुछ पैसा लेना नहीं चाहिए। फिर जो भी व्यक्ति फेवरेबल है सुनने के लिए अनुकूल है उनको बोलना चाहिए, और कब बोलना चाहिए, सुबह शाम को बोलना चाहिए, पूर्णिमा के दिन भी बोलना चाहिए, द्वादशी के दिन बोलना चाहिए। फिर बोला गया है कि महीने के अंत में बोलना चाहिए और संडे को बोलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हमारा फिट हो रहा है, रविवार के दिन हम गुणगान कर रहे हैं तो ये भी फिट होता है यहाँ पर। और फिर बोला गया कि जो भी ध्रुव महाराज का चरित्र बोलते हैं तो उनका सभी 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार 12वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। तो हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे और आज का जो सेक्शन है वो भी हम थोड़ा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कल अगर आप देखेंगे 13वां अध्याय कैसे शुरू होता है, क्योंकि हमने देखा क्या, नारद मुनि जाते हैं जहां पर प्रचेता तपस्या कर रहे हैं वहां पर जाके ध्रुव महाराज का गुणगान करते हैं, और ये कौन सुन रहे हैं, ये मैत्र मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को, ठीक है, मैत्र विदुर संवाद चल रहा है। और ये संवाद कौन किसी को बोल रहा है, आगे ऊपर जाके सुत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनका ऋषि को, सौनका ऋषि को नैमिषारण्य में। और ये संवाद कौन किसी को बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। इस तरह भागवत पुराण आया है, तो एक लूप के अंदर एक लूप के अंदर एक लूप चल रहा है, ठीक है। नारद मुनि बोल रहे हैं प्रचेतास को, ये सुने हमारे मैत्र मुनि, मैत्र मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को, ये संवाद बोल रहे हैं सुत गोस्वामी सैनिका जी ऋषि को, और वो संवाद बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है ये 12 स्कंद में व्यापा है भागवत में। तो जैसे ही ये हमारे विदुर मुनि सुनते हैं मैत्र से कि नारद मुनि ने प्रचेतास के सामने विदुर जी का गुणगान किया है, बोले अरे नाम तो पहली बार सुना है, प्रचेता है ये, कौन है ये, कौन है, किनके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं, कर क्या रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न जोड़ देते हैं, दूसरे तीसरे श्लोक में जोड़ देते हैं। कल सुबिलास प्रभु बोल रहे थे कि कौन है प्रचेता, किनके पुत्र हैं, तपस्या करने के लिए पानी के अंदर क्यों गए, और इतने साल तपस्या कर क्यों रहे हैं, करने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देते हैं। और उस प्रश्न को उत्तर देते हुए पूरा 4th कैंटो आगे चलेगा। तो जो अभी चतुर्थ स्कंद हम पढ़ रहे हैं इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए डिटेल में अभी मैत्र मुनि बताएंगे, वही हमारा जो 4th जो स्कंद है पूरा उसके ऊपर एक एक चैप्टर होकर आगे बढ़ेगा पूरा, क्योंकि जो प्रचेता है ये ध्रुव महाराज का ही जो वंशज में आगे जाके आते हैं, तो इसके लिए पूरा डिटेल में ध्रुव महाराज का वंशज बताएंगे अभी, उसमें सब आ जाएंगे, प्रचेता प्राचीन वरिषद उनके पुत्र प्रचेता पूरा 4th कैंडो एंड तक 31st चैप्टर तक ये पूरा प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ेगा। तो इस उत्तर अभी 13वां चैप्टर से अध्याय से आगे बढ़ रहा है उत्तर अभी। और 4 और 5 श्लोक में बोल रहे हैं कि विदुर बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी स्पीकर अगर बोलता है तो उसको थोड़ा एंकरेज भी करना पड़ेगा ना, तो बोल रहे हैं कि हे मैत्र मुनि मैं सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ, कृपा करके बताइए, और आप कृपा करके मुझे बताइए और मैं सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ, बोल के उनको बहुत एंकरेज करते हैं। तो अभी आज का जो सेक्शन है 6 श्लोक से लेके 20वां श्लोक तक आज का सेक्शन था, तो आज का सेक्शन आज हम शुरू करेंगे। 6 श्लोक दिखा सकते हैं। मैत्री उवाच ध्रुवस्य चोत्कल पुत्र पितरी प्रस्थिते वनम सार्वभौम श्रियम नैचात अधिराजशनम पितुहु। बोला जाता है कि ध्रुव महाराज जब चले गए, वन को चले गए, बद्री का आश्रम चले गए तपस्या करने के लिए, तो उनका जो पुत्र था उसका नाम है उत्कल। ध्रुव महाराज के दो पत्नियां थे, ठीक है, तो दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र था। एक पुत्र का नाम था उत्कल और दूसरे पुत्र का नाम था वत्सरा। तो यहां पर बोला गया कि ध्रुवस्य उत्कल पुत्र, जो उत्कल था, पितरी प्रस्थिते वनम, जब पिता वन को प्रस्थान कर गए, सार्वभौम श्रियम नैचात, न इच्छात, उनका कुछ भी इच्छा नहीं था। क्या इच्छा नहीं था? सार्वभौम मतलब सारा भूमि के ऊपर राजा होने का, सार्वभौम, तो उनको सार्वभौम होने का कुछ भी इच्छा नहीं था। अधिराजासनम पितुः, और राजा होकर आनंद लेने का कुछ भी इच्छा नहीं था, किनका? उत्कल का। फिर सातवां श्लोक, आठवां श्लोक और नौवां श्लोक, ये तीन श्लोक में बताते हैं कि उत्कल महाराज का क्या क्या चरित्र है। सजन्मोपशांतात्मा निसंघ समदर्शना ददर्श लोके बीतम आत्मानाम लोक आत्मनि। तो यहां पर पांच गुण उनका बताते हैं, उत्कल महाराज का क्या क्या पांच गुण था जिसके कारण वो राजा नहीं होने चाहते हैं और वन को गमन करना चाहते हैं, ऐसा क्या उनके अंदर गुण था। तो स जन्मो उपशांता, उपशांता मतलब सेटिस्फाइड, हमेशा तृप्त रहते थे, उनको जीवन में कुछ प्राप्त करने का इच्छा नहीं था, संतुष्ट थे, ये न के न प्रकार है ना, जो भी मिला है उससे संतुष्ट थे, इसलिए राजा होने का इच्छा ही नहीं है। निसंग, और किसी के प्रति आसक्त नहीं था, निसंग, संघ मतलब आसक्त, निसंग किसी के प्रति आसक्ति नहीं था। दूसरा हो गया समदर्शन, सभी को एक नजरिया से देखते, समदर्शन, कुत्ता बिल्ली जानवर मनुष्य पेड़ सबको एक नजरिया से देखते थे, समदर्शन। तीसरा हो गया ददर्श लोक वित्तम आत्मानाम लोक आत्मनि, है ददर्श लोक, ददर्श सबको देखते थे, लोक वित्तम सभी को, आत्मानाम भगवान को सभी लोकों के अंदर देखते थे। कैसे? अब बताइए, भगवान को सारे प्रजाओं के हृदय के अंदर देखते थे वो, कैसे देखते होंगे? परमात्मा के रूप में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा है ना, खिरोदक्षाय विष्णु, तो सभी को भगवान सभी के हृदय में वो दर्शन करते थे। लोकमात्मनि, और बोलते हैं कि, और सबको भगवान के ऊपर दर्शन करते थे, लोकमात्मनि कैसे? महाविष्णु के रूप में, तो महाविष्णु जब प्रलय होता है सारा संसार महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो महाविष्णु के अंदर सबको ही है, है? तो सबके अंदर भगवान को दर्शन करते थे और सबको भगवान के अंदर दर्शन करते थे। तो ये हमेशा भागवत में जो भी प्रेयर में आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आता है। तो सब में भगवान को कैसे दर्शन करेंगे? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और सबको भगवान के अंदर कैसे दर्शन करेंगे? महाविष्णु के रूप में। प्रलय के बाद सबको तो अंदर ही जाना है महाविष्णु के रूप में, तो ये उनका नजरिया था। तो यहां पर पांच क्वालिटी बताए, फिर आगे क्या क्या क्वालिटी, आठवां और नौवां श्लोक में, आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम पश्चात्मिता विग्रहम अवबोध रसैकात्म्यम आनंदम अनुसंतनम। तो यहां पर बता रहे हैं कि आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम, तो उनका ब्रह्म निर्वाण साक्षात्कार हो चुका था, ब्रह्म निर्वाण मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, उनका जो खुद मैं आत्मा हूं, ब्रह्म मतलब आत्मा हूं, वो आत्मा साक्षात्कार उनका हो चुका था, इसके लिए उनको राजा होने का कुछ इच्छा नहीं था। प्रत्यात्मनी विग्रहम मतलब क्या है, वो संतुष्ट थे और कुछ भी प्राप्त करने के लिए उनको इच्छा नहीं था। अवबोध रसैकात्मा, अवबोध रसैकात्मा मतलब जो शुद्ध ज्ञान है, भगवान का जो ब्रह्म ज्ञान है उसको भी वो प्राप्त कर चुके थे। फिर आनंदम, और जो भगवान का आनंद है वो आनंद को भी प्राप्त कर चुके थे। कोई राजा होता है किसके लिए? थोड़ा शासन करेगा आनंद मिलेगा, लेकिन उनको आनंद फिर पहले ही प्राप्त हो चुका था, तो फिर राजा होकर क्या मिलेगा, तो इसलिए वो राजा नहीं हुए। आनंदम अनुसंतनम, और ये आनंद जो साधारण आनंद नहीं था, अनुसंतनम मतलब हमेशा के लिए आनंद रहता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, वो आस्वादन हमेशा कर रहे थे, तो गुलाब जामुन हाथ में तो सिकुड़ी क्यों लेंगे, तो राजा होने का कुछ भी इच्छा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो आनंद है प्राप्त हो चुका था। फिर बता रहे हैं क्या, अव्यवच्छिन्न योगिना, वो जो भगवान का भक्ति का अव्यविच्छिन्न, वो हमेशा ध्यान में है, कभी वो टूटने वाला नहीं है, वो उस लेवल तक पहुंच गए थे। दग्ध कर्म मलाशया, वो जो भी कर्म का ग्रंथि था उसको जला दिए थे। दग्ध मतलब उसको जला दिए थे, कुछ भी कर्म का ग्रंथि उनका जीवन में नहीं था। स्वरूपम अवरुद्धानो, और क्या स्वरूप मतलब खुद का जो अस्तित्व है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और खुद का जो स्वरूप है उसको अवरुद्ध, उसको प्राप्त कर चुके थे खुद का स्वरूप को। भगवान के साथ में साक्ष्य रस में हूँ या दास्य रस में हूँ या माधुर्य रस में हूँ, वो संपर्क उनका वो प्राप्त कर चुके थे। नात्मानो अन्यम तद इक्षणम, और इसके अलावा और कुछ वो नहीं देखते थे, बस भगवान के ऊपर ही उनका एक ही नजर था, जिसके कारण वो राजा होने का उनका इच्छा नहीं था और वो भी वन को गमन कर लिए। तो 10वां श्लोक में बोलते हैं किस तरह वो राजा नहीं होंगे बोल के वो बताते हैं। जड़ानंद बदिरोत्माद मुखा मुखाक्तिर अतन मति लक्षितः पति बालानां प्रशान्तेर्ची इवानलः। तो देखो वो कितना कितना बुद्धिमान थे। तो राजा तो होने का इच्छा नहीं था, लेकिन कभी कभी लोग जबरदस्ती भी राजा बना देंगे ना। अभी अभी प्रियव्रत महाराज का भी इच्छा नहीं था राजा होने के लिए, लेकिन सब लोग जबरदस्ती बना दिया ना। स्वयंभू मुनि बोले राजा होना पड़ेगा, ब्रह्मा जी आके बोले दादाजी राजा होना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, सब लोग बोल रहे हैं तो बेचारा राजा हो गए। तो अभी ये बहुत बुद्धिमान है, ये क्या कर रहे हैं, तो जानबूझ के ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि कोई उनको राजा नहीं करेगा। क्या कर रहे हैं, जड़ा जड़ा मतलब क्या है, क्या सही है क्या गलत पता नहीं रहेगा, पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं। जड़ा जड़ा वस्तु है ना, ये जड़ा वस्तु है, तो खुद जड़ा वस्तु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अंध अंध के तरह व्यवहार कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जड़ अंध बधिर, बधिर मतलब सुनाई नहीं दे रहा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जड़ अंध बधिर उन्मात, उन्मात मतलब पूरा हाइट हो गया पागलपन का, उन्मात ऐसा कभी कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, उन्मात होते हैं। मुक कुछ बोलते ही नहीं है, मुक अटनमति, अटनामति मतलब लेकिन वो ऐसा नहीं है, अटनामति लेकिन वो ऐसा वार्तालाप कर रहे हैं लेकिन वो ऐसा है, नहीं है बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। अटनामति लक्षिता पति बालानाम, तो बालानाम मतलब जो जो बालानाम जो जिनका बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं कि ये पागल है, है? तो ऐसा सोच रहे हैं। प्रशांतर अचि इवानल, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। नला मतलब क्या, अनला मतलब आग है, जो आग जलता है कभी कभी देखेंगे आग जलेगा तो उसके ऊपर कभी कभी धुआं का आवरण आ जाता है, तो दूर से देखेंगे तो आपको आग दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही धुआं निकल जाएगा आपको फिर से आग दिखाई देगा। तो इस तरह ये एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जिस तरह वो एक्टिंग कर रहे हैं, बिहेविंग कर रहे हैं, जिस तरह पागल के तरह वार्तालाप कर रहे हैं, तो लग रहा है कि एक पागल है, लेकिन ये ऐसा धुआं के तरह उसको आवरण करके रखा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको पता चलेगा कि ये परम वैष्णव है, और ये जानबूझ के सब व्यवहार कर रहे हैं ताकि लोग उनको राजा ना बनाए। ठीक है, तो 11वें श्लोक में बोलने की जब प्रजा देखते हैं कि ये राजा बनने के लिए लायक ही नहीं है, तो फिर दूसरे भाई जो छोटे भाई है उनको राजा बना देते हैं। मत्वातम जड़म उन्मतम कुल वृद्धा समंत्रिता वत्सरम भूपतिम चक्रूर याबी यामसं भ्रमेसुतम। मत्वा तन जड़म उन्मातम, तो जब इस जड़ व्यक्ति को देखे है, इसलिए जड़ भरत भी था, वो भी ऐसे एक्टिंग करते थे जड़ भरत है, इसलिए नाम हो गया जड़ भरत। तो मत्वा तम, तम मतलब उत्कल महाराज को जड़म उन्मात, ये तो हाइट हो गया, उन्मात हो गया, जड़ वस्तु में सबसे पागलपन का सबसे बड़ा सीमा पार कर लिया उन्होंने। कुल वृद्ध सबसे बड़े भाई थे, समंत्रिणाम है, सब मंत्री बोले कि सबसे बड़े भाई है, लेकिन इस कारण के वजह से उनको राजा नहीं कर सकते, क्योंकि पागल को कौन राजा बनाएगा है। वत्सरम भूपतिम, जिसके उत्कल महाराज के दो पत्नियां थे, एक पत्नी का नाम है इला, दूसरा पत्नी का नाम है भ्रामी। तो उत्कल और इला से जो संतान जन्म हुआ था, ये है हमारे उत्कल महाराज जो सबसे बड़े थे। और उत्कल और ध्रुव महाराज और ब्राह्मी से जो संतान जन्म हुआ था वत्सरा, जो कि छोटे भाई थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या, वत्सरम भूपतिम चक्रुर, वत्सरा को राजा बना दिए, जो कि छोटे भाई थे, क्योंकि बड़े भाई पागल है तो छोटे भाई को राजा बना दिया, वत्सरम भूपति, भू का पति बना दिए। याभियामसम भ्रमे सुतम, जो कि भ्रामी के सुत थे, भ्रामी रानी के संतान थे। फिर 12वां श्लोक से लेके अंतिम 18वां श्लोक तक आगे पूरा ये जो वत्सरा महाराज के संतान के जो आगे का उनका संतान के बारे में बताते हैं। 12वां श्लोक, स्वर्वितीर वत्सरे येष्टा भार्या सुता षड आत्मजा पुष्पारणम तिग्मकेतुम च ईसम ऊर्जम वशुम जयम। तो अभी बता रहे हैं कि वत्सरा तो राजा बन गए, तो वत्सरा जो किनसे शादी करते हैं, स्वर्विती से शादी करते हैं, रानी से, स्वर्विती रानी से शादी करते हैं, और भार्या सुता षड आत्माजा, षड आत्माजा मतलब छह संतान जन्म होते हैं, षड आत्माजा क्या, कौन कौन छह संतान, दो पुत्र चार पुत्रियां, दो पुत्र कौन है, पुष्पारणम तिग्मकेतुम, ये दो संतान जन्म होते हैं और चार कन्या जन्म होते हैं, ईशाम ऊर्जा वशुम जयाम, ठीक है, चार पुत्री जन्म होते हैं। और फिर 13वां श्लोक में आगे जाके पुष्पारणम के जो वंशज के बारे में बताते हैं, पुष्पारणस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बहुवतुः प्रातर मध्यान्दिनाम सायम् इति ही आसम प्रभासुताम। तो पुष्पारणस्य वो विवाह किनसे किए, प्रभा से विवाह किए, ठीक है, पुष्पारण प्रभा से विवाह किए और इनके तीन संतान हुए, कौन कौन, प्रातः मध्यान्दिनम सायम, ये तीन संतान उनसे जन्म हुए, ठीक है। फिर पुष्पारण और एक रानी से शादी करते हैं, वो 14वां श्लोक में बोलते हैं, प्रादोष निशितो व्युष्टा इति दोषा सुता त्रयो व्युष्ट सुतम पुष्करण्याम सर्वे तेजसम आदते। तो पुष्पारण जो है उनके और एक रानी थे, उनका नाम है दोषा, ठीक है, प्रादोषा निशिता व्युष्टा, तो उनके तीन संतान जन्म होते हैं, कौन कौन तीन संतान, एक संतान का नाम है प्रादोष और दूसरे संतान का नाम है निशिता, तीसरे संतान का नाम है व्युष्ट, इस प्रकार तीन संतान जन्म होते हैं। और जो व्युष्ट रहते हैं वो शादी करते हैं किनसे, पुष्कारिण्यम से और एक रानी से, तो उनके संतान शादी करते हैं पुष्कारिण्यम से, और उनके एक संतान जन्म होते हैं सर्व तेजसम, सर्व तेजसम, ठीक है। फिर 15 से 16 आगे उनका डायनेस्टी आगे बढ़ता है, को हमको प्रचेता तक जाना है, तो इसलिए बता रहे हैं सब धीरे धीरे उनका परिवार बता रहे हैं, ताकि क्योंकि इधर विदुर जी को सुनना है प्रचेता के बारे में सताया, वो बोल रहे हैं ना, और किनके संतान है, कौन उनके परिवार वाले हैं, तो सब वो बता रहे हैं। सचक्षुषा सुतम आकुत्याम पत्न्या नाम मनुम अवापह मनोर आसुत महिषी बिरजान नडवला सताम पुरुम कुतसम त्रितम द्युमान सत्यवंतम रुतम बतम अग्निष्टोमाम अतिरताम प्रद्युम्ना शिविम उल्मुकाशा उल्कुमक उल्मुकम। तो यहां पर देखिए सर्व तेज शादी करते हैं किनसे, वो विवाह करते हैं आकुत्याम से, ठीक है, सर्व तेज आकुति से विवाह करते हैं और उनसे एक संतान जन्म होता है, उनका नाम है चक्षुष, ठीक है, चक्षुष, जो कि चक्षुषा मनवंतरा बनते हैं, छठवा मनवंतरा बनते हैं। फिर आगे जाके चक्षुषा किनसे शादी करते हैं, विवाह करते हैं नडवला, है चक्षुषा नडवला से विवाह करते हैं और उनसे 12 संतान जन्म होते हैं। 16वां श्लोक जो है 12 संतान का नाम लेते हैं, पहला संतान का नाम क्या है, पुरुम कुतस त्रितम द्युम्नाम स्त्यवंतम रुतम व्रतम अग्निष्टोटम अतिरतम प्रद्युम्न सिबिम उल्मुकम, ऐसे 12 संतान उनसे जन्म होते हैं। फिर 17वां श्लोक में वो 12 संतान में से एक संतान का नाम है उल्मुक, वो किन से विवाह करते हैं बताया गया है। उल्मुक उल्मुक जनयत पुत्रान पुष्करणीयम षड उत्तमाम अंगम सुमनशम ख्यातिम क्रतुम क्रतुम अग्निरसम गयम। तो उल्मुक विवाह करते हैं पुष्करणी से, ठीक है, और उनसे षड उत्तमा 6 संतान जन्म होते हैं। तो कौन कौन 6 संतान? अंगम है, अंगम सुमना ख्यातिम क्रतुम अग्निरशम गयाम, ये 6 संतान जन्म होते हैं। और आगे जाके इसमें से एक संतान का नाम क्या है? अंग है, तो अभी हमारा धीरे धीरे आ रहा है आगे अंग। तो अंग महाराज किन से शादी करते हैं वो 18वां श्लोक में बताते हैं। सुनितांगस्य या पत्नी सुसुबे वेणम उल्वनम यद्दहुहिल्यासा राजर्षि निर्विणो निर्गता पुरार। तो 18वां श्लोक में बताते हैं अंग महाराज जो रहते हैं वो शादी करते हैं, विवाह करते हैं सुनीता से है। सुनीता अंगस्य या पत्नी, अंग महाराज सुनीता से विवाह करते हैं, और कौन संतान जन्म होते हैं? सुसुबे वेणम उल्वनम, उल्वनम मतलब संतान, वेणा महाराज जन्म होते हैं। अभी वेणा महाराज का कथा शुरू होगा, वेणा महाराज जन्म होते हैं। लेकिन वेणा महाराज कोई साधारण महाराज नहीं थे, उनका क्या चरित्र था, क्या गुण था? यद दहुसिल्या, दहुसिल्या मतलब सबसे खराब चरित्र था, अच्छा चरित्र नहीं था। दहुसिल्या मतलब सबसे बुरा चरित्र था, बहुत खराब चरित्र था। सराज राजा था लेकिन चरित्र सबसे खराब था। निर्विण्णो निर्गता पुरात, और बोले कि वो सबसे खराब चरित्र था जिसके कारण जो अंग महाराज पूरा क्या बोलते हैं सबसे बड़ा सबसे फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी संतान इतना खराब जन्म होगा तो पिताजी को तो खराब लगेगा ना, पूरा वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए बोले कि घर छोड़ के चले गए। तो उसको समझाए समझाए समझाए, उसको इतना परिवर्तन करने के लिए चेष्टा किया लेकिन बच्चा सुधर ही नहीं रहा है। जैसे कम से था उग्रसेन को जेल में डाल दिया, वो जेल में डालने से पहले ही घर छोड़ दिए, और अंग महाराज वानप्रस्थ लेके जंगल चले गए और उसको छोड़ दिए, क्योंकि बोलते कि इतना इतना खराब था। बचपन से ही खेलने के लिए जाता था और किसी बच्चे को किसी कुआं में ढकल देता था, और किसी बच्चे को नाली में ढकल देता था, किसी को मार देता था, बचपन में ही ऐसा था। सोचो बड़े होके क्या करेगा। और जब बड़ा हुआ बोले कि उसके राज्य में कोई चोर नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था चोर? क्योंकि यही सबसे बड़ा चोर है। अभी राजा सबसे बड़ा चोर है तो कौन चोर रहेगा? तो कोई चोरी नहीं करता था उसके राज्य में, बोलते कि राजा ही सबसे बड़ा चोर था। तो ये था हमारे वेणा महाराज का कथा। तो इस प्रकार वेणा महाराज का कथा 18वां श्लोक में शुरू होते हैं, और बोलते हैं कि 19वां और 20वां श्लोक में बोलते हैं कि किस प्रकार अंग महाराज का जीवन में इतना दुख आता है। एक पिताजी को कितना दुख लगेगा अगर बेटा इतना बड़ा आकर पापी बनता है। तो बोलते हैं कि 18वां श्लोक में 19वां श्लोक और 20वां श्लोक में बोलते हैं यम अंग से पु कुपिताः वाग्वज्र मुनयो किला गतासो तस्य भूयस्ते ममंतुर दक्षिणाकरम अराजके तदालोके दस्युवी पीड़ित प्रजा जातो नारायणाम सेना पृथुर आदाय क्षर। तो अभी देखिए पिताजी तो छोड़ के चले गए अंग, लेकिन ब्राह्मणों का कितना शक्ति रहता है। तो वेणा जब इतना सब अपना जो सब खराब चीज सब करने लगा, सबको मारने लगा, चोरी करने लगा, तो यम अंग सेपुर कुपित है, तो जो ब्राह्मण थे वो बहुत गुस्से हो गए, बहुत उनको गुस्सा आया कि ये वेणा राजा है ना कौन है। तो फिर क्या किया, वाग वज्र मुनयो कीला, वाग वज्र तो जो ब्राह्मण लेते बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन जब समय आता है तो उनका वाक वज्र की तरह काम भी करता है, वज्र जिसके ऊपर गिरता है तो उसका मृत्यु तो होना ही सुनिश्चित है। तो ब्राह्मण का जो श्राप भी रहता है वो भी वज्र के तरह काम करता है। वाक वज्र मुनयो कीला, जितने सारे मुनि थे ऋषियां थे वो उनका जो वचन है वज्र के भांति वेणा के ऊपर श्राप दिए और गतासो तस्य भूय से, और उनको मृत्यु दंड दिया और वेणा का मृत्यु हो गया। फिर क्या होता है, जैसे वेणा का मृत्यु हो गया, ममंथुर दक्षिणे करम, उन्होंने क्या किया, उनका दक्षिणा हाथ को ममंथुर मंथन करते ना तो उनको भी मंथन किया। अबे हाथ को कैसे मंथन करेंगे वो पता नहीं मुनि, लेकिन ऋषियां किए उस समय पर, तो हाथ को मंथन किए और उससे क्या हो गया, अराजके तदालोके। क्यों मंथन किए, क्योंकि वेणा का कोई पुत्र नहीं था उस समय तक, तो आगे राजा होने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चोर था जिसके कारण कोई चोरी नहीं कर रहा था। जैसे ही इसका मृत्यु हो बोलते हैं कि तुरंत राज्य में चोरी बढ़ गया, डकैती बढ़ गया, लूटपाट सब बढ़ने लगा, क्योंकि अभी राजा मर गया, कोई बोलने के लिए नहीं है। तो अभी ब्राह्मण लोग बोले इसको तो मार दिया, लेकिन अभी इतना चोरी हो रहा है, सब हो रहा है, अभी इसका समाज को रक्षा कैसे करेंगे, तुरंत एक राजा चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो देखो ब्राह्मण लोग क्या किए, उसका हाथ को मंथन करने लगे। अराजके तदालोके दस्यु भी पीड़ित प्रजा, क्योंकि दस्यु बहुत सारे चोरी बढ़ गए थे और प्रजा पीड़ित थे, इसके कारण हाथ को मंथन करने लगे। जातो जन्म हुआ, क्या जन्म हुआ, नारायण अंशेन, नारायण का एक अंश जन्म हुआ उनके हाथ से। कौन वो नारायण का अंश है, पृथु आदय क्षितीश्वर, पृथु महाराज का जन्म होता है। तो इस तरह यहां पर हमने देखा किस तरह पृथु महाराज का जन्म होता है वीणा का हाथ को मंथन करके। पृथु और अर्ची दोनों का एक साथ जन्म होते है। अभी कोई बोलेगा कि अरे दोनों एक साथ जन्म हुए तो भाई बहन हो गए ना, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान दोनों एक साथ जन्म हुए लेकिन भाई बहन नहीं, स्वामी स्त्री थे वो, है भगवान थे और लक्ष्मी जी का वो अंश थे अर्ची। पृथु अर्ची दोनों वेणा से जन्म हुए और दोनों का विवाह होता है, बहुत आडंबर से सब देवताएं आते हैं, दोनों का विवाह करते हैं। और इस तरह अभी 21वां श्लोक से आगे हमारा पृथु महाराज का कथा चर्चा होगा, आगे हम अगले भागवत कथा में उसका चर्चा करेंगे। किनका कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं, जो हमने आज चर्चा किया उसके ऊपर। जय श्री श्रीमद् भागवत की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।